नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से संविधान की मर्यादा बनाए रखने, स्थापित मानदंडों का पालन करने और संसदीय आचरण की सीमा का सम्मान करने का आग्रह किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सभापति के रूप में पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सांसदों का कर्तव्य है कि जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। सभापति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राधा कृष्णन के मार्गदर्शन में सदन महत्वपूर्ण निर्णय लेगा और चर्चा करेगा।
समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, राजनीति जहां अलग अलग करवट बदलती रही के बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
विभिन्न दलों के नेताओं ने भी श्री राधा कृष्णन को सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की। सदन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर भी तीखी बहस हुई। उधर लोकसभा की कार्यवाही, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित रही। इससे पहले लोकसभा ने मणिपुर माल और सेवा कर GST दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। GST के 5% और 18% के 2 नए स्लैब के अनुरूप मणिपुर में भी इसे लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक सदन में पेश किया गया था। केंद्र ने कहा है कि अब तक 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार और 5 लाख से अधिक गिग कार्मिक तथा प्लेटफॉर्म कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 14 योजनाओं को पहले ही ई श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा चुका है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2,72,00,000 से अधिक शिल्पकार नामांकन करा चुके हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि अब तक 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। 7 लाख लाभार्थियों को 23 करोड़ से अधिक की डिजिटल प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जनजातीय आवासों के विकास और नवीनीकरण तथा सामुदायिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि योजना का उद्देश्य जनजातीय आवासों को विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण में अब तक 50,83,00,000 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.72% का पुनरीक्षण किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि अब तक लगभग 40 करोड़ फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। मतदाता सूचियों के SIR का दूसरा चरण देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले महीने की 4 तारीख से शुरू हुआ था। पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने DLC कैंपेन चौथे चरण के अंतर्गत 1,54,00,000 से ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए हैं। ये पहल विशेष रूप से सुपर सीनियर पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत का मुकाबला आज नामीबिया से होगा। ये मुकाबला चिली के सेंटियागो में भारतीय समयानुसार शाम 7:45 पर शुरू होगा। हांगकांग में हॉकी एशिया चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला मास्टर वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।